نحمده و نصلي على رسوله الكريم. سورة قاف کی 26 آیتیں ہم نے مکمل کر لی تھیں، آج ہم اس کی 27 آیت سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اس کا شیطان ساتھی کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گمراہ انسان ہوگا اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوگا جو اسے زندگی میں گمراہی کی ترغیب دیتا رہا، گمراہی کے وسوسے ڈالتا رہا. وہاں پر جب پیش کیا جائے گا تو یہ شیطان بھی وہاں پہ موجود ہوگا، اس کو بھی حاضر کیا جائے گا. اب وہ اس پر یہ جو الزام ہے کہ بھائی اس نے اس کو برائی کی تعلیم دی ہے، تو وہ کہہ کہ نہیں، میں نے اس کو برا نہیں بنایا، یہ تو اس کی اپنی مرضی تھی، تو میں نے اس کو برا نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی سرکش تھا اور یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یعنی یہ خود اتنا برا آدمی تھا اور اتنا سرکش تھا کہ الزام میرے پر نہیں آنا چاہیے، اسی کو سزا ملنی چاہیے. یہ اس کا شیطان ساتھی کہے گا. حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کے وسوسے سے ڈالتا رہتا ہے، برائی کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے. تو لیکن جو صالحین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والے سے بتایا، جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے، تو آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، لہذا اب وہ مجھے جو مشورہ دیتا ہے وہ بھی اچھا دیتا ہے. یعنی اس کو وہ ظاہر ہے شیطان سے مراد کیا ہے، جن ہے، جو جن ہے جو شیطنت نے اختیار کر رکھی تھی، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہوا ہے. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ خاص کر، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو اور صالحین ہوں ان کا معاملہ بھی یہی ہو کہ ان کا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور وہ ان کو اچھی ترغیب بھی دینے لگ پڑا. ایسا ممکن ہے بالکل، جیسے نبی نے اپنے حوالے سے تو بتا دیا ہمیں. تو لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو سرکش ہیں، غافل لوگ ہیں، ان کا شیطان تو شیطان ہی رہا، بلکہ وہ خود بھی شیطانی طبیعت کے لوگ تھے، تو انہوں نے پھر سرکشی اختیار کی. جب سرکشی اختیار کی تو یہ شیطان بھی انہیں اسی طرح کے مشورے دیتا تھا، لیکن وہاں جب خدا کے حضور پیشی ہوئی اور خدا نے جب ان کا حساب کتاب وہ لے گا اپنے بندوں کا، تو یہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہے گا، یہ جو اس کا قرین ہے یعنی ساتھی شیطان جو ہے، تو کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، اس کے جرائم کی ذمہ داری اسی پر ڈالیں، تو بلکہ یہ تو خود ہی کھلی گمراہی میں تھا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا. قال لا تختصموا لدي، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس نہ جھگڑا کرو، تم میرے پاس جھگڑا نہ کرو کہ اس کا قصور ہے، میرا قصور نہیں، یہ ہے وہ، میرے پاس جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہاری طرف جو اپنی وعید تھی، دھمکی تھی، وہ بھیج دی ہوئی تھی. میں نے تمہیں کہہ دیا ہوا تھا کہ اگر سرکشی اختیار کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، تم سزا پاؤ گے، یہ میں نے کہہ دیا تھا. اب میرے پاس جھگڑا نہ کرو کہ میرا قصور نہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور نہیں، میرا قصور ہے، یہ بات یہاں نہیں. ما یبدل القول لدیہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ہاں بات نہیں بدلتی، جو بات کہتی بس وہی بات آخری بات ہے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا ہوں. اچھا، یہ جو بات ہے کہ میں نے وعید تو تمہاری طرف پہلے بھیج دی تھی، جو میں نے بتانا تھا بتا دیا تھا، اب تم نے انبیاء کے ذریعے جیسے تعلیمات دی گئیں، اپنے خدا کے کلام کے ذریعے سے جو خدا نے باتیں ہم تک پہنچا دیں وہ آ چکی تھیں، اب اگر نہیں مانی تو پھر انسان کا قصور ہے کہ اس نے نہیں مانی، یا شیاطین کی طرف جو تعلیم دی گئی اگر انہوں نے نہیں مانی تو ان کا قصور ہے کہ انہوں نے نہیں مانی. تو فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاں بات نہیں بدلتی. بات تب بدلتی ہے اگر اس میں غلطی کا امکان ہو، یعنی کہ اگر ایک بندے نے بات کی تو اسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنی بات پہ غور کریں، ذرا اس میں کمی کر دیں، ذرا اس میں تبدیلی کر دیں، تو وہ بندہ محسوس کرتا ہے اگر वो कहने वाला महसूस करता है कि हाँ मेरी बात में भी तो गलत हो सकती है ना, चलो मैं इसको रियायत दे देता हूँ। ये रियायत खुदा के यहाँ नहीं पाई जाती। क्यों? कि बात में कोई गलती होती ही नहीं, बात होती ही बिल्कुल ठीक है। अब ठीक बात को क्या ठीक किया जाए, तो वो तो पहले ही काम है। लहदा खुदा कहते हैं जो मैंने बात की वो हतमी बात है, उसमें तब्दीली नहीं है, वो पहले ही पूरी हिकमत के साथ की गई बात है। वमा अना बिज़ल्ला मिन लिल अबीद, अब अगर इस तरह बात नहीं बदलती तो क्या ख्याल हो सकता है कि ये बात तो बड़ी सख्त है, ये तो हम पर जुल्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने कहा नहीं, जुल्म का कोई सवाल नहीं, मैं तो अपने बंदों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला नहीं हूँ, ये ज़रा छोटे से छोटे दर्जे में भी जुल्म करने वाला नहीं हूँ। लिहाजा मैंने जो भी तुम्हें कहा था कि ये जुर्म करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, इसके अंदर जुल्म का कोई नामो निशान भी नहीं पाया जाता था। और तुम जो कह रहे हो इस वक्त कि हमें यह रियायत मिले या मेरा कसूर नहीं इसका कसूर है, वो कह रहा है इसका मेरा कसूर नहीं इसका कसूर है, तो ये चीज़ अब करने की नहीं है। मेरी बात हिकमत पर मबनी थी और मैंने वो बात जो की थी उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी, और ना मैं कोई जुल्म करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मेरी तरफ कोई जुल्म मुझसे हो रहा होता तो मैं तब्दील करता, लेकिन इसका कोई सवाल ही नहीं, ना खुदा जुल्म करता है ना वो बात को तब्दील करेगा। फरमाया यौम नकूल उल जहन्नमा हल इम्तलात व तकूल हल मिन मज़ीद। अब ये क़्यामत के दिन का जो उसमें मुख्तलिफ़ वाक़ियात होने ना, एक वाक़िया बयान किया है कि वो दिन जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे हल इम्तलाती, क्या तू भर गई है, यानी तेरे अंदर इतने दोज़खी आए हैं, इतने जहन्नमी लोग डाले गए हैं, तो क्या तू पुर हो गई है, भर गई है जगह तेरी सारी। व तकूल हल मिन मज़ीद, और वो कहेगी क्या कुछ और भी हैं। तो अब ये जो बात है कि बात इस तरह की गई कि क्या तेरे अंदर आगे हैं, लेकिन उसकी खुदा के दुश्मनों के साथ जो एक दोज़ख के खुद अपने वजूद के अंदर एक गुस्सा है, यानी उन जहन्नमी लोगों पर, उन सरकश लोगों पर, मुशरिकीन पर, मुनाफिकीन पर, कुफार पर, तो वो उस हवाले से कह के और हैं तो और डालो, यानी कि वह तकूल हल में मज़ीद कह के कुछ और भी हैं, अगर और भी हैं तो वो भी लाइए। यानी उससे पूछा गया कि तू भर गई है, तो उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं भर गई हूँ या नहीं भरी, सादा तरीके से जवाब नहीं दिया, बल्कि कह के और हैं तो और लाएँ। यानी कि जैसे किसी से खाने का पूछा जाए ना कि क्यों जी पेट भर गया, कहता है जी और है खाना, तो इसका मतलब ये है कि भूख मेरे अंदर है अभी। तो वो जहन्नमियों को निगलने की या जहन्नमियों को सजा देने के लिए जो है उसके अपने अंदर, यानी जो जहन्नम है ना वो गुस्से की हालत में होगी खुदा के दुश्मनों के बारे में, खुदा के मुनकरीन के बारे में। ये जुमला उस नौयत का है। وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, और जो जन्नत है वो मुत्तकियों के लिए करीब लाई जाएगी, गैर बईद, इस हाल में कि वो दूर नहीं होगी। जन्नत पहले ही दूर नहीं थी, लेकिन उसे मुत्तकियों के लिए बिल्कुल करीब लाया जाएगा, ताकि जो जो है ना मैदान हशर से जन्नती लोग जन्नत में चले जाएं। ये उसका दिन का दूसरा वाक्या बयान किया कि दोज़ख का मामला ये है और जो जन्नत है वो पहले भी दूर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल उसे करीब लाया जाएगा मुत्तकियों के लिए, ताकि मुत्तकी उसमें दाखिल हो जाए। हदीस में ये आता है कि किस तरह दाखिल होंगे जन्नती लोग, जब उन्हें परवाना मिल चुका होगा कि तुम्हारी बख्शिश हो गई है, तुम्हें अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, खुदा की अदालत से वो कामयाब जब सुरखरू लौटेंगे तो फिर वो जन्नत में जाएंगे ना, तो कुरान मजीद में आता है गिरो दर गिरो जाएंगे, और गिरो दर गिरो जाएंगे तो इस तरह जाएंगे जैसे एक जन्नती है ना, तो उन्होंने ऐसे हाथों में हाथ डाले होंगे, मतलब जैसे एक लाइन की लाइन बनाई है, बड़े खुशी खुशी दोस्तों की तरह जा रहे हैं, तो वो मतलब जन्नत में जाएंगे जन्नती लोग, और जहन्नम में जो जाने वाले हैं वो धकेले जाएंगे। ज़ाहिर है कि वो तो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन उन्हें धक्के मार मार कर जहन्नम के अंदर धकेला जाएगा, और जन्नती खुशी खुशी जाएंगे। हाज़ा मा तू वदूना लिकुल अव्वाब हफीज़, हाज़ा मा तू वदूना लिकुल अव्वाब हफीज़। ये है वो बात, ये है वो चीज़ जिसका वादा किया जाता है हर रजू लाने वाले और हिफाजत करने वाले से, यानी कि हर वो शख्स जो कि अल्लाह की तरफ पलटने वाला था, अल्लाह की तरफ रजू लाने वाला था और हिफाजत करने वाला था। नमाज़ पढ़ता है तो नमाज की हिफाजत करता है, अपने आमाल को लापरवाही से नहीं करने वाला, जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने वाला है। एक है लापरवाही से काम करना, तो गोया आपने हिफाजत नहीं की चीज़ की, वजू की तो सही तरह नहीं किया, नमाज पढ़ी तो तेज़ी से पढ़ दी, नहीं आपने अपने आमाल की हिफाजत नहीं की। तो हर वो शख्स जो हिफाजत करने वाला है और रजू लाने वाला है, उसके लिए जो अल्लाह का वादा है वो पूरा होगा, यानी कि वो यही है कि इसे जन्नत में पहुँचाया जाएगा। मन खशियर रहमान बिलग़ैब, ये वो शख्स यानी कि जो अल्लाह से गैब में रहते हुए डरता था, रहमान से, जो रहमान से डरता था गैब में रहते हुए, कि रहमान जो है ये तो अल्लाह की वो सिफत है कि जिसमें जोश रहमत पाया जाता है। तो जोश रहमत का तकाजा क्या ये बनता था कि इंसान बेनियाजी करता, तो अल्लाह मेहरबान है लिहाजा जो मर्जी करते जाओ, नहीं ये नहीं। ये तो कोई ज़ालिम आदमी इस तरह करेगा कि जैसे खुदा को वो समझ रहा है कि खुदा को पता ही नहीं चलेगा, खुदा गाफिल है और मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, उसकी रहमत ने मुझे एक जज्बाती वजूद की तरह माफ़ कर देना है। जैसे माँ बाप है ना, तो वो बच्चे की जज्बात में मुबतला होते हैं, मोहब्बत में मुबतला होते हैं, तो वो बच्चे की गलतियाँ जो कि माफ़ नहीं होनी चाहिए वो भी माफ़ कर देते हैं। खुदा की ज़ात ऐसी नहीं है, खुदा बहुत मेहरबान है लेकिन वो असूल को नहीं तोड़ता खुदा। तो वो जो है फरमाया कि जो रहमान ज़ात से डरते थे गैब में रहते हुए, जबकि वो रहमान को देख नहीं रहे थे, ना उसकी जो ऐसी दुनिया जिसमें उसकी निशानियाँ बहुत नुमाया हैं, निशानियाँ तो यहाँ भी नुमाया हैं खुदा की, लेकिन वो दुनिया जिसमें फरिश्ते हैं मसलन, उस दुनिया में भी से भी वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन वो जो है वो अल्लाह से डरते थे। तो ये डरने वाले जो लोग हैं ये असल में असल लोग, ये असल में इंतहाई ईमानदार आदमी जो है ना, ये उसकी ताबीर हो जाती है कि भी कोई नज़र नहीं आ रहा जो मुझे देख रहा हो, जो मुझे पूछेगा, बिल्कुल कोई नहीं, हर मैं आज़ाद हूँ जो मर्जी करूँ, लेकिन वो कहते नहीं, जो वादा है वो पूरा करना है। नमाज है इखलास से पढ़नी है, क्या कोई आपको निगरानी कर रहा है, कोई आपको देख रहा है, नहीं, मेरे मैंने दिल के अंदर भी ख्याल गलत नहीं लाने। तो इतनी निगरानी खुद करता है इंसान अपने ऊपर, हालाँकि मादी तौर पर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं होता। तो ये शख्स, इसका मतलब है कि ये बेलौस भी है और बेहतरीन जज्बात रखता है और मुखलिस शख्स है और ईमानदार शख्स है। तो ये ज़ाहिर है कि ईमान बिलग़ैब ही से ये कैफियत पैदा होती है। वजाब कल्ब मुनीब, और ये शख्स जो है जो रहमान से डरने वाला है गैब में रहते हुए, ये एक इनाबत करने वाला, रजू करने वाला दिल लेकर आया अल्लाह के पास। कैसा दिल लेकर गया? ये दिल से मेरा शख्सियत है कि कैसी शख्सियत लेके गया, जो अल्लाह की तरफ लौटने वाली है, यानी खुदा से भागने वाली नहीं है, उसकी तरफ पलटने वाली है हर हाल में, यानी कि चाहे उसके हालात अच्छे हों तब भी खुदा की तरफ पलटता है, खुदा की तरफ, और चाहे उसके हालात बुरे हों तब भी वो खुदा की तरफ पलटता है। उदखुलूहा बिसलाम, अब ये कहा जाएगा उनको कि इस जन्नत में दाखिल हो जाओ सलामती के साथ। ज़ालिक यौमुल खुलूद, ये हमेशगी का दिन है, यानी वो जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे ना, तो उन्हें कहा जाएगा कि सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। हर तरफ सलामती ही सलामती है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई किसी तरह की कोई दुख वाली बात ही नहीं है। और ये दिन हमेशगी का है कि अब मौत नहीं है, अब फना नहीं है, अब हमेशा बाकी रहना है तुमने। लहुम मा यशाऊ नफीहा व लदैना मज़ीद, और उनके लिए वहाँ पर होगा जन्नत में जो वो चाहेंगे, जो वो चाहेंगे हो, जो वो चाहेंगे होगा। ये जो बात है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, यानी कि यहाँ पर मसला ही क्या होता है दुनिया में कि भाई जो आप चाहते हैं ना वो नहीं हो सकता, जहाँ पे मुमकिनात बहुत महदूद हैं कि बस ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप लंबी चौड़ी तमन्नाएं करें, ये नहीं मुमकिन। यहाँ पर जन्नत में जो तमन्ना करें वो हो जाएगी पूरी, जो तमन्ना करें वो हो जाएगी पूरी, लेकिन इंसान अच्छी तमन्नाएँ करेगा और इंसान हद के अंदर रहते हुए तमन्ना करेगा। यानी ये नहीं कि जन्नत में कोई ये तमन्ना करे या अल्लाह मुझे खुदा बना दे, ये इसका मतलब वो पहचानने नहीं, ये तो एक किसी एक बच्चे या किसी बेवकूफ़ आदमी की बात है, इस तरह की मामला वहाँ नहीं होगा। इंसान अपने अपने लेवल पर खड़े होकर बेशुमार तमन्नाएँ करेगा। फरमाया वाला दीना मजीद, और हमारे लिए मजीद भी होगा, जो तमन्नाएँ वो करेंगे वो तो करेंगे ही, हमारे पास इसके अलावा भी होगा और थोड़ा नहीं बेशुमार। कि जो तुम्हारे आमाल की अजर बनता था वो तो दे दिया। अब इसके अलावा हमने वो देना है जिसको तुम्हें पता ही नहीं, तुम मांग सकते ही नहीं, तुम्हें पता हो तो मांगो ना, हमारे पास वो भी है। हमने वो चीज़ें छुपा के रखी हैं, नहीं बताई, इंसान के जहन की पहुँच ही नहीं है वहाँ तक। तो फरमाया हमारे लिए इसके अलावा भी है, और वो अलावा अल्लाह के पास है जो कि बहुत फैयाज है। तो वो मज़ीद जो है वो कोई थोड़ा सा नहीं है, वो फिर अपनी जगह पर बेशुमार है। ये जी 35 आयतें मुकम्मल हो गई, तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।